पृष्ठ 204 कहानी के उद्देश्य में जीवन मीमांसा तो नहीं किंतु प्राय जीवन के प्रति एक दृष्टिकोण का भी परिचय मिल जाता है। कुछ लेखक समझौते को पसंद करते हैं तो कुछ संघर्ष को, कुछ लोग संसार को जैसा का तैसा स्वीकार कर लेते हैं तो कुछ उसमें आमूलचूल परिवर्तन चाहते हैं। प्रगतिवादी कहानियों में क्रांति द्वारा आमूल परिवर्तन की व्यंजना रहती है। कुछ कहानीकार उद्देश्य को महत्व देते हैं तो कुछ केवल जीवन के विश्लेषण और मन की अंधतम गुफाओं में प्रकाश की रेखा पहुंचाने को, मनुष्य को भली प्रकार समझा देना है कि देना ही उनका उद्देश्य हो जाता है। जिन कहानियों में चरित्र चित्रण की ही प्रधानता रहती है या रेखा चित्र दिया जाता है उनमें उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट तो नहीं रहता किंतु उनमें उसमें भी चित्रण का दृष्टिकोण रहता है, उसी को उद्देश्य समझना चाहिए। जैसे प्रेमचंद जी के बड़े भाई साहब शीर्षक कहानी में अग्रज होने की बड़ाई दिखाकर अपनी कुंद जहनी छिपाने वाले लोगों की कमजोरी का उद्घाटन है। कफन या शतरंज के खिलाड़ी जैसी कहानियों में चित्रण की ही मुख्यता है किंतु उनमें भी अलमस्त बेफिक्रे जीवन पर एक व्यंग्य रहता है जो पाठक पर उस स्थिति से अपने को बचाए रखने का प्रभाव डालता है, यही उसका उद्देश्य हो जाता है। शैली का संबंध कहानी के किसी एक तत्व से नहीं वरन सब तत्व से है और उसकी अच्छाई या बुराई का प्रभाव पूरी कहानी पर पड़ता है। कला की प्रेषणीयता अर्थात दूसरों को प्रभावित करने की शक्ति शैली पर ही निर्भर रहती है। किसी बात के कहने या लिखने के विशेष प्रकार को शैली कहते हैं। इसका संबंध केवल दो शब्दों से ही नहीं है वरन विचार और भावों से ही भी है। शैली के कुछ गुण जैसे संगति, तार्किक, क्रम आदि तो विचार से संबंध रखते हैं और कुछ भाषा से। कलाकार का उद्देश्य किसी बात को केवल बोधगम्य कराना ही नहीं है वरन प्रभाव डालना भी है। बात तो जो शुष्कम काष्ठम तिष्ठ त्यग्रे में है वही नीरस सरोवर विलसती पुरतः में भी है, लेकिन प्रभाव वैसा नहीं है। अच्छी शैली के लिए लक्षण व्यंजना आदि भाषा की सभी शक्तियों से लाभ उठाना पड़ता है। वैसे तो प्रत्येक लेखक की अलग शैली होती है किंतु मोटे तौर से दो प्रकार की शैलियां पृष्ठ 205 है। एक चलते मुहावरेदार भाषा की जिसके प्रतिनिधि और नायक है मुंशी प्रेमचंद, दूसरी अलंकृत संस्कृत धान शैली जिसके उत्कृष्ट उदाहरण जिस हमको चंडी प्रसाद हृदयेश तथा प्रसाद जी की कहानियों में मिलते हैं। प्रसाद जी साधारण जीवन से संबंध रखने वाली कहानियों में भी एक रस है। मुंशी प्रेमचंद की मुहावरेदार भाषा का अच्छा उदाहरण हमको उनकी बड़े भाई साहब शीर्षक कहानी में मिलता है। उससे एक छोटा सा उदाहरण नीचे दिया जाता है। मेरे फेल होने पर मत जाओ, मेरे दर्जे में आओगे तो दांतों पसीना आ जाएगा, अलग जरा और ज्योमेट्री के लोहे के चने चबाने पड़ेंगे और इंग्लिस्तान का इतिहास पढ़ना पड़ेगा। मेरे दर्जे में आओगे लाला तो ये सारे पापड़ बेलने पड़ेंगे और तब आटे दाल का भाव मालूम होगा। इस दर्जे में अव्वल आ गए हूँ तो जमीन पर पैर नहीं रखते, इसलिए मेरा कहना मानिए, लाभ फेल हो गया हूँ लेकिन संसार का मुझे तुमसे कहीं ज्यादा अनुभव है। जो कुछ कहता हूँ उसे गिरा बांधिए, नहीं पछताइएगा। इस अवतरण में चलते मुहावरे के अतिरिक्त हिंदी उर्दू के शब्दों का बड़ा सुखद सम्मिश्रण है। मुंशी प्रेमचंद जी इस मुहावरे दानी के शौक में कहीं कहीं अंग्रेजी के मुहावरे ले आए हैं, जैसे हमेशा सिर पर एक नंगी तलवार सी लटकती मालूम पड़ती है। मुहावरों में भाषा की लक्षणा शक्ति के प्रयोग से कुछ चमत्कार आ जाता है और कुछ अपनी बात को एक बंधी बधाई प्रचलित शब्दावली के भीतर ले आने का सामाजिक सुख मिलता है। इन मुहावरों में चित्र से रहते हैं जो बात को शीघ्र ही हृदयंगम करा देते हैं। हृदयेश जी की शैली प्राय बाढ़ की लिखी हुई कादंबरी की शैली का अनुकरण करती है किंतु बड़े समस्त की क्षमता जितनी संस्कृत में है उतनी हिंदी में नहीं, इसलिए वह अपेक्षाकृत कहीं सरल है, फिर भी ढंग वही है। ऐसी शैली में भाव की अपेक्षा शब्दों का चमत्कार अधिक रहता है। एक छोटा सा उदाहरण लीजिए, पतंग प्रिया पद्मिनी प्रोषित पतिका की भांति श्रीविहीन हो संकुचित हो गई। पक्षी कुल संरक्षक विहीन गायक समाज की भांति मूक हो गया प्रकृति। परिश्रम के विश्राम की भांति स्तब्ध हो गई। गंगनांगर में विहार करता हुआ चंद्रमा अपनी शुभ्र चंद्रिका की शीतल धारा से धरणी देवी के दिनकर कर तप्त कलेवर का सिंचन करने लगा। प्रतिज्ञा नाम की कहानी से प्रसाद जी अपने भाषा में संस्कृत के शब्दों के प्रयोग से एक विशेष शालीनता ले आते हैं। संस्कृत के शब्द उनकी भाषा की गति को कुंठित नहीं कर देते हैं। प्राचीन वातावरण को अवतरित करने के लिए संस्कृत प्रधान शैली ही उपयुक्त होती है। शैली का चुनाव विषय पर भी निर्भर रहता है। घटना प्रधान सामाजिक पृष्ठ 206। कहानियों में प्रेमचंद जी की ही शैली अच्छी है। भाव प्रधान कहानियों में दोनों प्रकार की शैलियां प्रयुक्त होती हैं, किंतु मार्मिक स्थलों में साधारण शब्दों से भी भाव का अच्छा उद्रेक हो सकता है। उपयुक्त शब्द चयन, पद मैत्री, सुसंगठित वाक्य विन्यास, अकुंठित प्रवाह, पपती हुई अलंकार योजना, भाषा की चित्रोपमता, लक्षणा व्यंजना, शक्तियों का सफल प्रयोग, हास्य व्यंग्य का पुट, शैली के इन सब प्रभाव गुणों के अतिरिक्त कहानी में शैली संबंधी दो विशेष शक्तियों की आवश्यकता होती है। एक है वर्णन शक्ति, दूसरी है प्रकथन या प्रबंध कथन शक्ति, जिसके लिए उपयुक्त शब्द के प्रभाव के अभाव में अविवरण शक्ति का प्रयोग होने लगा है। यदि इसके लिए प्रकथन शक्ति शब्द गढ़ लिया जाए तो विशेष सुविधा रहेगी। वर्णन जड़ और चेतन का होता है और उसमें प्रकृति चित्रण भी आ जाता है। विवरण में अधिकतर घटना वर्णन रहता है। वर्णन में स्थायी गुणों का चित्रण रहता है और विवरण में गतिशील घटनाओं या दशाओं का चलचित्र रहता है। वर्णन द्वारा कहानीकार वह काम करता है जो नाटक में पर्दों और अभिनेताओं द्वारा होता है। विवरण का सबसे बड़ा गुण है कौतूहल को जागृत रखना और गति में शैथिल्य न आने देना। गति में शैथिल्य आना बनावटीपन की शंका दिला देता है। कहानीकार में यह शक्ति तभी आती है जबकि उसमें गहरी अनुभूति के साथ सजीव कल्पना हो और उसके चित्र को बाहर प्रतिफलित करने की शक्ति हो। इन शक्तियों का कहानीकार में जितना योग होगा उतनी ही उनकी सफलता निश्चित होगी। भाषा के सौष्ठव के साथ कहानी के मुख्य गुण संगति और प्रभाव की एकता को न भूलना चाहिए। अच्छी कहानी घटनाओं, भावों, विचारों तथा प्रारंभ, प्रसार और अंत में अनवीति लाने का प्रयत्न करती है। कहानी का आदि और अंत। कहानी का आदि उसका प्रवेश द्वार है। यदि यह प्रवेश द्वार ऐसा नहीं कि हमारे जिज्ञासा वृत्ति को जागृत कर सके अथवा और किसी प्रकार का आकर्षण उत्पन्न कर सके तो उसके पढ़ने के लिए पाठक की स्वाभाविक रुचि न होगी। विवशतावश उसे चाहे जो कुछ करना पड़े, कहानी के आदि और अंत के संबंध में अमेरिकी आलोचक का कथन है कि कहानी एक घोड़े की भांति है। उसकी चाल का आरंभ और अंत विशेष महत्व रखता है। ए स्टोरी इज लाइक अ हॉर्स, इट इज द फिनिश दैट काउंट मोस्ट। कहानी के आदि के लिए यह आवश्यक नहीं कि वह वास्तविक आरंभ हो, किंतु वह ऐसा मार्मिक स्थल हो जहाँ से आगे पीछे के अंश जोड़े जा सके। यह आरंभ किसी महत्वपूर्ण वार्तालाप से और चाहे किसी विशेष स्थिति, वातावरण या घटना और कभी चरित्र के वर्णन पृष्ठ 207 से भी हो सकता है, किंतु इसमें कुछ बात ऐसी हो कि जो हम जानने या रहस्य उद्घाटन की इच्छा या दिलचस्पी पैदा कर सके। प्रारंभिक वर्णनों और वार्तालाप में प्रायः कहानी की गतिविधि और दिशा का संकेत भी रहता है, लेकिन वह होता बहुत सूक्ष्म है। वातावरण की विवेचना में हमने जो प्रसाद जी की पुरस्कार शीर्षक कहानी से प्रारंभिक अवतरण दिए हैं, वे बड़े सुंदर प्रवेशक हैं। प्रसाद जी ने एक आकर्षक वातावरण देकर धीरे धीरे कहानी के विषय में परिचित करा दिया है। पाठक को ज्ञात हो जाता है कि उत्सव वर्षा के संबंध में है और सम्राट उसमें भाग ले रहे हैं। कथोपकथन से आरंभ होने वाली कहानी का उदाहरण हमको आकाशदीप में मिलता है। कहानी का आरंभ जैसा आकर्षक होना चाहिए, वैसा ही उसका अंत चमत्कारपूर्ण और स्थायी प्रभाव डालने वाला होना चाहिए। कहानी के अंत की झंझटी जितनी देर तक हमारे मानस गगन में गूंजे, उतना ही हम कहानी को सफल समझेंगे। सुदर्शन जी की कवि की स्त्री शीर्षक कहानी का अंत बड़ा काव्यमय तथा हृदय पर गहरी चोट देने वाला है। देखिए, उस रात मुझे ऐसी नींद आई जैसी इसके पहले कभी ना आई थी। मैंने पति को ठुकरा दिया था, परंतु उनके प्रेम को नहीं ठुकरा सकी। मनुष्य मर जाता है और उसका प्रेम जीता रहता है। कहीं कहीं कहानी का अंत चरम सीमा के साथ हो जाता है और कहीं कहीं उसके बाद ही, किंतु बहुत बाद नहीं, बहुत बाद में होने से कहानी में शिथिलता आ जाती है। कहानी का शीर्षक यदि कहानी के अंत में संबंधित हो तो सोने में सुगंध की बात हो जाती है, जैसे कि प्रसाद जी की पुरस्कार शीर्षक कहानी में अथवा चतुर्सेन शास्त्री की दुखवा कासो कहो मेरे सजनी में। कहानी कहने का ढंग, उपन्यास की भांति कहानी कहने के भी तीन ढंग हैं, वर्णनात्मक या ऐतिहासिक रीति। इसमें कथाकार दृष्टा की भांति कहानी को कहता है। अधिकांश कहानियां इसी शैली में लिखी जाती हैं। प्रेमचंद जी की बूढ़ी काकी, कौशिक जी की ताई, गुलेरी जी की उसने कहा था, इसकी उदाहरण है। आत्मकथा रीति, इसमें कहानी का कोई प्रमुख पात्र कहानी को आप बीती के रूप में कहता है। कभी कभी एक पात्र दूसरे से सुनी हुई कहानी को कहता है, जैसे चंद्रगुप्त विद्यालंकार की पगडंडी शीर्षक कहानी अथवा जैनेन्द्र जी की जानवी नाम की कहानी। सुदर्शन जी की कवि की स्त्री शीर्षक कहानी में तीन पात्र हैं, सत्यवान मणिराम और सावित्री, जिन्होंने अलग अलग कथा का सूत्र मिलाते हुए आत्मकथात्मक रूप से कहानी कही है। डायरी भी आत्मकथा का रूप है, पत्रों के रूप में। कहानी का विस्तार पत्रों के रूप में भी प्रकाशित हो जाता है। पृष्ठ 208, इसमें प्रायः दो पात्रों के उत्तर प्रत्युत्तर रहते हैं। उनमें पात्र कथा का अपना अपना अंश कहते हैं। प्रसाद जी की देवदासी इसका उदाहरण है। विनोद शंकर व्यास की अपराधी कहानी एक पत्र के रूप में लिखी गई है। हिंदी कहानी का विकास, यद्यपि यह कहना तो कठिन है कि हिंदी की पहली कहानी कब और किसने लिखी, तथापि यह निर्वाद रूप से कहा जा सकता है कि इनको प्रचार देने में सरस्वती का बहुत बड़ा हाथ है। हिंदी में कहानियों का लिखा जाना संवत 1957 से आरंभ हुआ। संवत 1957 से भी दो चार वर्ष पूर्व कहानियां लिखी गई, किंतु वे प्रायः अंग्रेजी और संस्कृत नाटकों के संक्षेप मात्र थी। हिंदी कहानी के प्रारंभिक लेखकों में श्री किशोरी लाल गोस्वामी, गिरजा कुमार घोष, पार्वती नंदन, वंग महिला पंडित, रामचंद्र शुक्ल, मास्टर भगवान दास आदि हैं। इन लोगों की लिखी हुई कहानियों में कुछ तो मौलिक हैं और कुछ बंगला से अनुवादित। इन प्रारंभिक लेखकों की कहानियों में किशोरी लाल गोस्वामी की इंदुमती और वंग महिला की दुलाई वाली ने विशेष ख्याति पाई। वास्तव में स्वनाम धन्य जयशंकर प्रसाद जी ने इस क्षेत्र में अवतरित होकर छोटी कहानियों में एक प्रकार की त्राण प्रतिष्ठा कर दी। उनके ग्राम नाम की पहली कहानी उनके द्वार संस्थापित इंदु नाम की पत्रिका में संवत 1967 में निकली। उनकी आकाशदीप, पुरस्कार, प्रतिध्वनि, चित्र मंदिर आदि कहानियों ने एक नया युग स्थापित किया। उनकी कहानियों में स्वर्णिम आभा से विभूषित प्राचीनता के वातावरण को उपस्थित करने के अतिरिक्त अच्छे मनोवैज्ञानिक चित्रण आए हैं। उसमें हमको बड़े सुंदर अंतर्द्वंद भी दिखाई देते हैं। प्रेम का संघर्ष है, आत्म बलिदान द्वारा मधुलिका इस द्वंद का शमन कर देती है। इसके पश्चात विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक कहानी के क्षेत्र में आए। इनकी कहानियां अधिकतर सामाजिक हैं। इनकी बहुत सी कहानियों में शहरी जीवन के अच्छे चित्र आए हैं। इनकी कहानियां वार्तालाप प्रधान हैं। सुदर्शन जी का नाम भी कौशिकी जी के साथ लिया जाता है। इनकी कहानियों में के कुछ कथानक राजनीतिक आंदोलनों से भी लिए गए हैं। इनकी न्याय मंत्री नाम की कहानी ऐतिहासिक है, इसने बहुत लोकप्रियता प्राप्त की है। इनकी लिखी हुई हार में जीत शीर्षक कहानी में उच्च मानवता के दर्शन होते हैं। सुदर्शन जी शहरी मध्य वर्ग के प्रतिनिधि कहे जा सकते हैं। वास्तव में सुदर्शन जी कौशिकी जी और प्रेमचंद जी के साथ हिंदी कहानी लेखकों की बृहत्रयी में रखे जा सकते हैं। मुंशी प्रेमचंद जी ने हिंदी कहानियों में जान डाल दी है। उन्होंने सरल मुहावरेदार भाषा में बड़े सुंदर मनोवैज्ञानिक चित्र दिए हैं। ग्रामीण जीवन के दृश्य उपस्थित करने में वे सिद्ध हस्त हैं। उन्होंने अपनी कहानियों द्वारा साधारण मनुष्यों में भी उच्च मानवता के दर्शन कराए हैं। पंच परमेश्वर में पद का उत्तरदायित्व दिखलाया है। बड़े घर पृष्ठ 209 की बेटी बुरे अर्थ में भी बड़े घर की बेटी है और भले अर्थ में भी अपने नाम को सार्थक करती है, जो देवर और पति के बीच में लड़ाई का कारण बनती है, वही उनमें मेल कराकर अपने हृदय की मानवता का परिचय देती है। शतरंज के खिलाड़ी आदि कहानियां जीवन के अच्छे चित्र हैं। ईदगाह में गरीब मुस्लिम जीवन की झांकी मिलती है। मुंशी जी की कहानियां अधिकांश में घटना प्रधान है, किंतु उनमें भावुकता का भी पुट पर्याप्त मात्रा में मिलता है। मुंशी जी की कहानियों में वर्णन का यथार्थवाद है, किंतु उद्देश्य आदर्शवादी है। वे आदर्श उन्मुख यथार्थवादी थे। मुंशी प्रेमचंद जी की आधुनिक कहानी के बाहरी दृश्यों में मनुष्य के अंतर जीवन की झलक दिखने की प्रवृत्ति पूर्ण रूपेण परिलक्षित होती है। श्री चंडी प्रसाद हृदयेश ने जो कहानियां लिखी हैं, वे कहानी की अपेक्षा गद्य काव्य का नाम अधिक सार्थक करती हैं। उनकी कहानियों में भाषा का चमत्कार अधिक है। प्रेमचंद जी के बाद कहानी साहित्य में जैनेन्द्र जी का नाम आदर से लिया जाता है। आपकी कहानियों में युग की नई भावनाओं के दर्शन मिलते हैं। आपकी खेल नाम की कहानी को पढ़कर कविवर मैथिली शरण गुप्त ने कहा था कि हिंदी में रवि बाबू और शरद बाबू हमको मिल गए और एक साथ मिले। जैनेन्द्र जी की कहानियों में कथानक अथवा तथ्य निरूपण का इतना महत्व नहीं जितना कि मनोवैज्ञानिक चित्रण का, फिर भी वे बीच बीच में बड़ी तथ्यपूर्ण बात कह देते हैं। उनकी कहानियों पर उनकी दार्शनिकता की छाप रहती है। जैनेन्द्र जी के उपन्यासों के पात्रों की भांति ही उनकी कहानियों के पात्र भी कुछ असाधारण होते हैं। चंद्रगुप्त जी विद्यालंकार ने बड़ी सुंदर कहानियां लिखी हैं। आपकी तांगे वाला, क ख ग, डाकू, 24 घंटे आदि कहानियों ने अधिक प्रसिद्धि पाई है। 24 घंटे नाम की कहानी में क्वेटा भूकंप का हाल है। डाकू के दरबार साहब के धार्मिक वातावरण का अच्छा चित्रण है। कामकाज नाम की कहानी में सीधा उपदेश न देकर मन पर प्रभाव डाला गया है कि पाठक अनुभव कर सकता है कि कामकाज के नाम पर मानवता की कितनी हत्या होती है। एक सप्ताह नाम की कहानी पत्रों में लिखी गई है। अज्ञेय जी अब वात्स्यायन के नाम से गए हैं। उन्होंने कहानी कला में विशेष निपुणता प्राप्त की है। अपनी आपकी कहानियों में विप्लव और विस्फोटक की सी भावना रहती है। आपकी अमर वल्लरी नाम की कहानी में एक विशेष काव्य भावना को लेकर पीपल वृक्ष का जीवन वृत्त आया है। यह एक प्रकार का शब्द चित्र है जो जड़ चीजों को भी सजीव बना देता है। ऐसी कहानियों में कल्पना का प्राधान्य रहता है। कमलाकांत वर्मा की पगडंडी शीर्षक कहानी में पगडंडी ने आत्मकथात्मक रूप से अपना वृत्त ऐसे ढंग से कहा है कि जिससे मनुष्य भी कुछ तथ्य ग्रहण कर सके। इसमें उपेक्षित पृष्ठ 210 रहते हुए कर्तव्य पालन में मग्न रहने की अमर शिक्षा मिलती है। श्री आनंद अन्नपूर्णानंद और श्री जी पी श्रीवास्तव ने विनोदपूर्ण कहानियां लिखी हैं। श्री भगवती चरण वर्मा भी वर्मा की कुछ कहानियों में बड़े सुंदर सामाजिक व्यंग्य आए हैं। श्री चतुर्सेन शास्त्री ने कुछ ऐतिहासिक कहानियां अच्छी लिखी हैं। उनका भाषा प्रभाव प्रशंसनीय है। वर्तमान कहानी लेखकों में श्रीया राम शरण गुप्त, सत्यजीवन वर्मा, विनोद शंकर व्यास, पांडे बिचल शर्मा उग्र, उपेन्द्रनाथ अश्क, पहाड़ी यशपाल, विष्णु प्रभाकर, राधा कृष्ण, प्रसाद प्रभृति महानुभावों के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। पंत जी की पांच कहानियों में पान वाले आदि के शब्द चित्र देखने को मिलते हैं। हिंदी की स्त्री लेखिकाओं में शिवरानी देवी, सुभद्रा कुमारी चौहान, कमला देवी चौधरानी, उषा देवी मित्रा, चंद्रकिरण, सोनरिक्सा, होमवती, चंद्रवती जैन प्रभृति देवियों ने विशेष ख्याति पाई है। इन देवियों में हिंदू पारिवारिक जीवन के सुंदर चित्र मिलते हैं। इस प्रकार की कहानियों में दो प्रवृत्तियां हैं, प्रकृति से उपदेश ग्रहण की प्राचीन प्रवृत्ति और मानवीकरण की नवीन छायावादी प्रवृत्ति। आजकल का कहानी साहित्य कला और भाव व्यंजना दोनों ही दृष्टियों से बहुत संपन्न है। वर्तमान कहानी यथार्थवाद से अधिक प्रभावित है। इसी प्रभाव के कारण भाषा अन्य प्रकार की विचार सामग्री उपस्थित करने की प्रवृत्ति बढ़ाती जाती है। आधुनिक कहानियां कौतूहल की पूर्ति करने वाले आकस्मिक संयोगों से पूर्ण घटनाओं से चलकर उसके द्वारा मानव चरित्र और उसके अंतरंग जीवन पर प्रकाश डालने की ओर अग्रसर होती है। कौतूहल की पूर्ति की अपेक्षा भावाभिव्यक्ति की ओर अधिक ध्यान दिया जाता है। उपदेश ग्रहण होता है किंतु अधिक व्यंग्यात्मक और प्रभावात्मक ढंग से कराया जाता है और वातावरण को भी प्रधानता मिलती है। तो बाह्य और आंतरिक प्रकृति को के सामंजस्य दिखलाने के लिए इस प्रकार आधुनिक कहानी का विकास क्रम बाहर से भीतर की ओर रहा है। समाप्त।